पृष्ठ 93 हिंदी के महाकाव्य। हिंदी साहित्य का इतिहास 3 कालों में विभाजित किया जाता है। 1 आदिकाल अर्थात वीर गाथा काल, 2 भक्ति काल जिसमें निर्गुण और सगुण दोनों की ही शाखाएं सम्मिलित हैं, 3 वर्तमान काल जिसके विकास क्रम की 3 श्रेणियां की जा सकती हैं, अ हरिश्चंद्र युग, ब द्विवेदी युग और स प्रसाद पंत निराला युग। वीर गाथा काल। आदिकाल में प्रबंध और मुक्तक दोनों ही प्रकार के काव्य लिखे गए हैं। प्रबंध काव्यकार अपने व्यक्तित्व को अपने उपास्य अथवा आश्रयदाता के व्यक्तित्व में मिला देता है। यद्यपि वीर गाथा काल में लोक भावना का बाहुल्य था अर्थात साहित्य का जनता से संपर्क था, फिर भी कविता राज्याश्रित ही थी। कवि लोग स्वयं भी अपने आश्रयदाता की ओर से युद्ध में सम्मिलित होते थे और वे नितान पैसे के गुलाम भी न थे। उनमें चाहे आजकल सी व्यापक राष्ट्रीय भावना न हो, फिर भी वे अपने राज्य के लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। चंद बरदाई ने कलम और तलवार दोनों से ही पृथ्वीराज की सेवा की। अपने व्यक्तित्व को समर्पण करने वाले ऐसे ही कविगण प्रबंध काव्य में लिख सकते थे। पृथ्वीराज रासो। यद्यपि पृथ्वीराज रासो के प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों का मतभेद है, तथापि उसको हिंदी के प्रथम महाकाव्य होने का श्रेय दिया जाता है। हम उसको स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहेंगे। वह बृहद ग्रंथ 59 समयों में समाप्त हुआ है। रिपीट, यह बृहद ग्रंथ 69 समयों में समाप्त हुआ है और लगभग 2500 पृष्ठ का है। यह ग्रंथ पृथ्वीराज केंद्रित है। इसमें केवल युद्ध का ही वर्णन नहीं हुआ वरन वीर भावना के साथ शांत और श्रृंगार रसों का भी पर्याप्त पुट है। इसमें जो देवताओं और भक्ति मुक्ति आदि की स्तुति हुई है वह उसके सांस्कृतिक पक्ष का द्योतक है। चौहान वंश की उत्पत्ति के साथ साथ क्षत्रियों के अन्य 36 वंशों की उत्पत्ति आदि की कथाएं भी चंद ने बड़े विस्तार से के साथ कही है, किंतु इन वर्णनों में चौहान वंश की ही की प्रधानता है और चौहान वंश में भी विशेषकर पृथ्वीराज के युद्धों विवाहों और आखेट आदि के वर्णनों का प्राधान्य है। पृथ्वीराज रासो के निर्माण में चंद के पुत्र जलहन का भी हाथ है क्योंकि उसने ही इस ग्रंथ की समाप्ति की थी जिसका उल्लेख रासो में इस प्रकार आता है, पुस्तक जलहन हाथ से चली गज्जन रिपकाज। इसकी भाषा के कई स्तर होने के कारण विद्वानों का मत है कि ग्रंथ तो छोटा सा ही रहा होगा, किंतु कालांतर में इसमें बहुत कुछ जोड़ा गया। फिर भी इस ग्रंथ से तत्कालीन पृष्ठ 94 भावनाओं और जातीय आदर्शों का अच्छा परिचय मिलता है। भक्ति काल निर्गुण एवं प्रेम काव्य। भक्ति काल के निर्गुण पंथियों में कबीर आदि ने मुक्तक गीत ही लिखे। वे परमात्मा को अपने में ही खोजते थे और उनका ध्येय किसी व्यक्ति विशेष की उपासना या आराधना न था। वे न अवतार ही पुरुषों को ही मानते थे और न किसी राजा के ही आश्रित थे जिसके गुणगान के लिए वे अपने को भूल जाते। उनका निर्गुण शुद्ध निर्गुण था। वह प्रेम का विषय तो बन सकता था किंतु घटना प्रधान लौकिक महाकाव्य का विषय बनने के अयोग्य था। पद्मावत। प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी संसार से इतने विमुख न थे। वे लोक और परलोक दोनों ही की साधना चाहते थे। उन्होंने अपने पद्मावत में वैष्णवी परंपरा के अनुकूल शेर शाह की वंदना की है। उन्होंने लौकिक प्रेम गाथाओं के रूपक द्वारा पारमार्थिक प्रेम की साधना की है। पद्मावती की प्रेम कथा जो पृथ्वीराज रासो में वीर रस के आश्रित गौर थी वह जैसी की पद्मावत में मुख्यता प्राप्त कर लेती है। पद्मावत में कथा भी और रूपक के द्वारा अलौकिक तत्वों की व्यंजना भी है। यद्यपि जैसी मुसलमान थे तथापि भारतीय संस्कृति से पूर्णतः परिचित थे। थोड़े बहुत हेर फेर के साथ उनके काव्य में भारतीय अंत कथाओं और धार्मिक परंपराओं का उल्लेख हुआ है। उसमें रसों की अपेक्षा अनविति अधिक है और आरंभ से लेकर अंत तक शैली और भाषा की एक रसता है। पद्मावत प्रबंध काव्य का अच्छा उदाहरण कहा जा सकता है। ऐसे स्थलों की को छोड़कर जिसमें नाम परिगण की प्रवृत्ति और एक ही विषय का वर्णन कुछ आवश्यकता से अधिक हो गया है, उसमें कथा का निर्वाह अच्छा हुआ है। कोई वस्तु ऐसी नहीं लाई गई जिसका कथानक में उपयोग न हुआ हो, जैसे समुद्र से प्राप्त किए हुए रत्न अलाउद्दीन को संधि की पूर्ति में भेंट किए गए। इसमें कथानक के साथ रूपक भी चलता है और दोनों का ही समान महत्व है, इसलिए आचार्य शुक्ल जी ने इसे समासोक्ति कहा है। भक्ति काल सगुण भक्ति काव्य। भक्ति काल की सगुण शाखा में दो शाखाएं प्रस्फुटित हुई हैं, एक कृष्णाश्रयी और दो रामाश्रयी। रामचरितमानस कृष्णोपासक कवियों ने अपने आराध्य का माधुर्य पक्ष ही लिया था और इस कारण से उनका मन प्रगीतात्मक मुक्तकों के लिखने में अधिक रमा। ब्रज भाषा प्रगीत काव्य के लिए उपयुक्त भी थी। यद्यपि भगवान कृष्ण के जीवन का लोक रक्षक पक्ष भी था, तथापि उनका माधुर्यमय लोक पक्ष अधिक आकर्षक था। राम काव्य के नायक के जीवन में पर्याप्त अनेक रूपता थी जो सहज में प्रबंध काव्य का विषय बन सकती थी। तुलसीदास ने यद्यपि कोमल भावनाओं के लिए ब्रज भाषा की मुक्तक शैली को भी अपनाया था, तथापि उनके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम पृष्ठ 95 रामचंद्र जी की भूमि जन्मभूमि की भाषा होने के कारण उनकी रुचि अवधि की ओर अधिक थी। उनका वृहद ग्रंथ अवधि में लिखा गया। तुलसीदास जी के सामने अवधि में प्रबंध काव्य का एक उदाहरण भी था, जिसमें की दोहा चौपाइयों की शैली प्रशस्त की जा चुकी थी। प्रबंध काव्य अवधि भाषा की प्रकृति के अनुकूल अधिक है। ब्रज भाषा में मुक्तक अधिक सफल रहता है। यद्यपि कृष्णायन काव्य कृष्ण चरित संबंधी है, तथापि वह आधुनिक अवधि में ही लिखा गया है, क्योंकि अवधि प्रबंध काव्य के अधिक अनुकूल पड़ती है। तुलसीदास जी ने भक्ति भावना से प्रेरित होकर अपने महाकाव्य को खंड काव्य की भांति सजाया और सवारा है। जो बात अंग्रेजी में ताजमहल के लिए कही गई है कि उन्होंने दानवों की भांति वृहदाकार में उसका निर्माण किया और जौहरियों की भांति एक एक फूल पत्ती की पच्चीकारी की, वह रामचरितमानस के संबंध में भी चरितार्थ होती है। नंददास जी तो केवल जड़िया ही थे, किंतु तुलसीदास गढ़िया और जड़िया दोनों ही थे। रामचरितमानस में आदर्श प्रबंध काव्य का सा कथानक और भावना का संतुलन है, तथा साथ ही स्वाभाविकता और कला का सामंजस्य है। राम कथा के न कहने वाले होते हुए भी उसकी प्रबंधात्मकता में अंतर नहीं आने पाया है। तुलसीदास जी ने काव्य सौष्ठव को बढ़ाने के लिए वाल्मीकि रामायण की कथा से कहीं कहीं अंतर कर दिया है, जैसे परशुराम जी का आगमन विवाह से पूर्व महाराजा जनक की राजसभा में दिखाया गया है। वाल्मीकि की भांति विवाह के पश्चात बारात लौटते समय नहीं गोस्वामी जी को रामचंद्र की महत्ता समस्त क्षत्रिय समाज में दिखानी थी और वह बात धनुष यज्ञ के स्थल पर ही संभव थी। इसके अतिरिक्त जनक की सभा में परशुराम जी के क्रोध के उद्दीपन की सामग्री भी अधिक थी। तुलसीदास जी ने प्रसन्न राघव आदि नाटकों से भी सामग्री ली है, किंतु सब सामग्री को एक प्रबंध में बांधकर एक रस कर लिया है। रामचरितमानस में रामचंद्र का कासा छंद वैचित्र का प्राचुर्य तो नहीं है, किंतु तुलसी ने अपने को दोहा चौपाइयों में ही सीमित नहीं किया है, वरन प्रसंगानुकूल हरिगीतिका छप्पय आदि अन्य छंदों का भी समावेश किया है। रामचंद्रिका केशव की रामचंद्रिका यद्यपि प्रबंध काव्य के रूप में लिखी गई है थी, तथापि उसमें मुक्तक की सी स्फुटता विद्यमान अलंकरण एवं पांडित्य दर्शन की ओर कवि की रुचि अधिक थी। कथाओं में न तारतम्य है और न अनुपात। राम वनवास की सारी बात एक छंद में चलती कर दी जाती है। यह बात भरतस्य की मात सुनी, पठौ बन राम ही बुद्धि गुनी, ते ही मंदिर मो नृप सो विनियो। पृष्ठ 96। वर देहु हुतो हमको जो दयो, कैकेयी नृपतासु विशेष भरत लह, वर्षय बन 14 राम रह। रामचंद्रिका। केशव ने प्रायर धार्मिक स्थलों का ध्यान नहीं रखा, परंतु यत्र तत्र मर्म को स्पर्श करने वाली पंक्तियां भी हैं, जहां पर वह आचार्य न होकर सामान्य सहृदय कवि के रूप में आए हैं। यथा चित्रकूट में रानियों द्वारा दशरथ मरण का समाचार अपने आंसुओं द्वारा देना, पुनि पुत्र को मुख जोई, क्रमते उठी सब रोई। रामचंद्र का। यहाँ राम के मुख की ओर देखकर आंखों से आंसू भर लाने में जो भाव व्यंजना हुई है, वह शब्दों द्वारा संभव नहीं थी। इसी प्रकार सीता को अशोक वाटिका में अपनी मुद्रिका से संबोधन करने का स्थल भी पूर्ण मार्मिक बन पड़ा है। वन गमन के समय में वे रामचंद्र जी द्वारा कौशल्या को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिलाते हैं, जो सर्वथा अनुपयुक्त स्थल था। रामचंद्र जी भगवान होते हुए भी कौशल्या के पुत्र थे, वे क्या अपनी माता को वैधव्य का आचार्य बताते? यदि इसी का वर्णन करना था तो वशिष्ठ जी के मुख से अधिक उपयुक्त होता, वह भी दशरथ जी के देहावसान के पश्चात। छंदों और अलंकारों के बाहुल्य ने रामचंद्रिका के प्रवाह को कुंठित सा बना दिया है। केशव का तो आदर्श वाक्य ही था कि भूषण भिन्न राजई कविता बनिता मित्र। फिर उनके ग्रंथ में अलंकारों की प्रधानता क्यों न होती? फिर भी अलंकारों के प्रयोग में उनके प्रयोग करने वाले की पात्रता का ध्यान रखना आवश्यक था। गांव की स्त्रियां सीता जी के मुख की चंद्रमा से समता करती हुई कहती हैं, वासो मृग अंक कहें तो सौ मृग नैनी सब, वह सुधाधर तुह सब सुधाधर मानिए, वह द्विजराज तेरे द्विजराजी राजे, वह कला निधि तुह कला कलित बखानिए। रामचंद्र का। तुलसी और उनके दृष्टिकोण में और भी अंतर था। तुलसी ने अपने कवित्व विवेक पर गर्व न करके सारा श्रेय अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी को ही दिया है। एही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। किंतु केशव ने रामचंद्रिका में अपने ग्रंथ के बहु छंदों का सवर्ग उल्लेख किया है। पृष्ठ 97। रामचंद्र की चंद्रिका वर्णित हो बहु छंद, जहाँ तुलसीदास प्राकृत जनगुण गान को एक पाप समझते थे, वहाँ केशवदास जी राजाश्रय में रहकर राजता करते थे। उनके लिए राम की अपेक्षा अपने सुख और व्यक्तित्व का अधिक महत्व था। यह बात नहीं कि केशव में भक्ति नहीं थी, तथापि तुलसी जी की भांति वे अपने राम में अपने पांडित्य पूर्ण व्यक्तित्व को भुला न सके। वास्तव में रामचंद्र का अपने विषय के अनुसार भक्ति काव्य है और शैली के अनुसार रीति काव्य है।